बात नहीं कर सकते, उसके स्वाद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो हरिनाम की रस संबंधित जो ज्ञान है वो ज्ञान कहां प्राप्त होगा? या तो शुद्ध भक्त के संग से या उनके द्वारा रचना की गई ग्रंथ से। शुद्ध भक्त के संग तो सबको प्राप्त नहीं होता, बहुत मुश्किल से जो भाग्यशील है भाग्यवान है उसी को ही शुद्ध भक्त के संग प्राप्त होते हैं, और हमेशा नहीं होता है, कुछ समय के लिए होता है, बाकी समय नहीं होता। तो कैसे संरक्षण किया जाएगा उस भक्त को जो ये हरिनाम की पान करना चाहते हैं? तो एकमात्र साधन है ये ग्रंथ, जो भगवान के मुखारविंद से निकलते हैं, भक्त के मुखारविंद से निकलते हैं, और जिनके प्राप्त करने के बाद हम अपने जीवन की मैल को धो सकते हैं और जान सकते हैं कि किस प्रकार हम इस संसार में फंसे हैं, इस संसार के बंधन से कैसे हो सकते हैं, कौन से कर्म के द्वारा दूसरे जीव की कल्याण कर सकते हैं, कौन से कर्म द्वारा हम दूसरे जीव को आनंद प्रदान कर सकते हैं, संसार में सुखमय शांतिपूर्वक जीवन रास्ता दिखाने की प्रयास कर सकते हैं। ये ग्रंथ के द्वारा भगवान ने संदेश दिया है, और उस संदेश को भक्तों ने लिपिबद्ध करके हम जैसे पतित जीवों के लिए संसार में छोड़ गए। तो भगवान को काम करके गए, अब उस ज्ञान को पहुंचाने का जिम्मेदारी है भक्तों के, भक्तों की जिम्मेदारी है। जो भगवान के भक्त है उनके जो भक्त है उनके भक्त ये परंपरा से ये जो कार्य चले आ रहे हैं ये जिम्मेदारी उन्हीं को होते जा रहे हैं। शुरू शुरू में भगवान ने धर्म की स्थापना करी, फिर उनके भक्त ने उन धर्म को प्रचार प्रसार करने का जीवन बिताया, और उससे भी बड़ा जन जन में इसको पहुंचाने के लिए उनके भक्तों के द्वारा उनके भक्ति के द्वारा कार्य चलते रहते। तो प्रभुपाद के संग में जो भक्त लोग इस कार्य में भागीदारी बने थे, जो अभी भी कर रहे हैं, उनके भूमिका का इस पुस्तक में लिखा है, लिखा है, और वही हम पाठ करेंगे। इस प्रकार से ये लोग इस आंदोलन को शुरुआत की और कैसे अभी तक चल रहा है। तो किस तरह पुस्तक तक के महत्व बताए हैं, सन 1974 का आरंभ एक प्रकार के गंभीर प्रतिरोध के साथ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वियतनाम युद्ध के विरोधियों के विरुद्ध निर्णय दिया, वे प्राइवेट व्यापार मार्केटों में राजनीतिक पद से नहीं बांट सकते थे। फिर कैसे भगवान तो एक एक कवि कह रहे हैं कि सारे जगह में मेरे नाम की प्रचार कर, दूसरी तरफ उनके नाम की प्रचार में कितना विरोध आ रहा है। भगवान
तो कैसे हटेगा,
जब हम शुद्ध हो जाएंगे, इस नाम लेते लेते अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को, शरीर को शुद्ध बना लेंगे, तब बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जैसे रूपा जी की है, रूपा जी की गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि उन्होंने कहे थे कि आपके पास अगर धन हो तो ये भगवान के संदेश को पुस्तक के रूप में वितरित करना, जन जन ये सपना उनके प्रभु गुरु जी के था। रूपा निष्कपटक व्यक्ति थे, स्थानीय उनके पास धन भी नहीं था, कोई ख्याति भी नहीं थी, साधन सा जीवन जी रहे थे, कोई बहुत बड़ा भक्त भी नहीं थे। राधापुर में प्रवचन सुनने आए थे इलाहाबाद से, तो वहां बहुत सारा भक्त थे, वो भी उनमें से उन्हें बैठे सुनने थे। अगर उनके गुरु जी ने उनको लक्ष्य करके बताया कि मैं देख रहा हूं मेरा जो एक मंदिर बना हुआ कलकत्ता में बाग बाजार की, वहां भक्त लोग आप उसमें बेकार चीजों के रखते हैं, ये रूम कौन लेगा, वो रूम कौन लेगा, ये थाली किसकी है, वासन किसका है, इस बंटवारे के चक्कर में जीवन बिता रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं वो देख करके, तो अभी मैं सोच रहा हूं मंदिर को बेच रहा हूं और सारा जो पैसा है उसे कर छपा के सारे संसार वितरित करो। तो कितना महत्वपूर्ण बात कही थी जो प्रभुपाद के दिल में समा गए। मगर वो निश्चय ऐसा में उनके पास कुछ था नहीं, ना भक्त थे, ना धन था, ना कोई आश्रय था, संगत ये गृहस्थ जीवन पालन कर रहे थे, मगर सपना जो हृदय में बैठ गए उसको साकार करने के लिए सोचते रहे। और सोचते सोचते कितना समय बिता दी, 70 साल की उम्र तक पहुंच गए। और उस समय में उन्हें सब कुछ छोड़ के विदेश चले गए, वहां जाकर के ऐसी जगह में पड़ गए जहां और भी संकटमय स्थिति है, न रहने की, न खाने की, न कोई जान पहचान व्यक्ति कोई नहीं है, और वहां की स्थितियां देख के घबरा गए कि ये कौन सी जंगल में आ गए, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, जीवन ऐसा पशु से भी अधम है। ऐसा परिस्थिति में भगवान सदस्य कैसे स्वीकार कर रहे हैं, तो भी मन में संसार दूर हो गई, क्योंकि विश्वास था भगवान जब हमें यहाँ भेजे हैं तो मेरे द्वारा कुछ ना कुछ काम कराएंगे जरूर, ये विश्वास जागृत हृदय में हमेशा। और यही विश्वास के बल पर आगे चल के उन्होंने कितना बड़ा संस्था बनाया जो हम यहाँ बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। तो संकट हमेशा आते रहते हैं, उससे हम घबराते नहीं, वो सारे संकट दूर करते हैं भगवान गुरु गोरख की कृपा से। ये कहते हैं प्राइवेट पेपर मार्को पे राजनीतिक पर्चे नहीं मार सकते, ऐसा उस समय उनकी सरकार ने ऐलान कर दिया था प्रधानमंत्री समय कि दुकान दुकान में ये जो पर्चा मारते हैं। आजकल भी हमें बहुत सारा, जैसे हम हमारे बच्चों कुछ लोग सड़कों में कुछ समय पहले किताब मारने जाते थे, बड़ी लोग लोग परेशान होते प्रतिरोध कर रहे थे, नहीं बेकार चीज है, हमें तंग कर रहे कई मार बढ़ रहे, मगर उसके समझ में नहीं आया कि उसके लिए भलाई के लिए कर रहे। इतना करके धूप में इतना तकलीफ उठा के खतरा मोड़ करके भक्त लोग उनको एक ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं, वो उसको बहुत बड़ा गंदा काम समझ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया, वो सोच रहे हैं हमारा दिमाग खराब करने आ गए हैं, रुकावट करने आ रहे हैं, हम घर जा रहे हैं और बेचारे कहीं जा रहे हैं, बेकार की भक्तों का कीर्तन करने शिकायत होने। इस तरह की जो लोग हैं कि हमेशा रहते हैं वो रहेंगे भी। जय श्री राधा राधे ब्रह्म भगवान की जय, श्री श्री गौर सबलाल भगवान की जय, श्री कृष्ण बड़े सुंदर मन श्री गोविंदा की जय, श्री कृपा। तो लाभ ना कमाने वाले नागरिक के दल जिनमें धार्मिक दल में सम्मिलित थे, निजी स्थान में लोगों से अनुदान ग्रहण करने का काम केवल उन स्थानों के मालिकों के अनुमति से कर सकते थे, जो शिक्षा से भगवान की काम करना चाहते हैं उनके विभिन्न प्रकार के लोग रुकावट पैदा कर देते हैं और फिर भी भक्त लोग उनके पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मगर वो तस्से पास होना नहीं चाहता। और भगवान चाहे है उस काम को सुगम कर देते बाद में। इस प्रकार के मार्गों का उपयोग भक्त पुस्तक वितरण के लिए अब तक करते आए थे, ये उनके कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए, बाहर निकाल दिया उसने कर सकता। ये बहुत बड़ा परीक्षा है भगवान भक्त के द्वारा ले रहे हैं कि तुम कैसे मेरे भक्त बन सकते हो। आसानी से नहीं, आ गया वहां से अंदर में जाए कर दिया आराम से बाल मोड़ा मंदिर लगा के बस आप शुद्ध भक्त बन गया। सर हर क्षण हर पल में परीक्षा देना ही पड़ता है भगवान को भक्ति में। जब इस परीक्षा में पास हो जाता है वो ही भगवान की लीला को धूम को भगवान के जो कार्यशैली के रस को पान कर सकते समझ सकते हैं। दूसरा अधिकारी नहीं बनते प्रयास के तरह संभव हो सकता। तो जिस कारण ने भक्तों को निजी संपत्ति के प्रयोग से वंचित किया उसी ने सार्वजनिक स्थान में उनकी मौत भी करा दी। जब इस कारण भक्त ने लाभ बेगा सवाया थे कि विरुद्ध जो उस नगर के अधिपत्य में था कानूनी मुकदमा किया तो उन्हें इस आधार पर तुरंत आज्ञा मिल गई कि हवाई अड्डा उनके भाषण की स्वतंत्रता का अपहरण करना है। इस आदेश से पुस्तक वितरण में नए युग के आरंभ की संभावना प्रकट हुई। इससे सभी बड़े हवाई अड्डों में संकट समाप्त हो गया। भगवान ने भक्त की इच्छा के पूर्ण किए। भगवान कहते हैं भगवत गीता सर्वधर्मान प्रत्यक्ष मामे कर्षण अहम दाम स्वर्ग प्राप्त हो शरण मां सुचो। सारे चीज छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ तो मैं क्या करूंगा तुम्हारा सारे संकट दूर कर दूंगा। इसमें मैं संत नहीं करूंगा पर हम संत करते हैं पता नहीं भगवान करते हैं। और जब संध आ जाता है तो रुकावट आ जाता है। एक प्रॉब्लम पूर्ण विश्वास पूर्ण समर्पण जब तक नहीं होते तब तक भगवान की सहायता मदद नहीं होती। भक्त करते रहते हैं भक्त कृपालु दयालु कमल हृदय वाले होते हैं तो वो उसके मदद करते राहत दिखाते रहते हैं मगर भगवान तब तक नहीं करते जब तक पूर्ण समर्पण आपके नहीं होते। हमने भी देखा है गोपाल जी जब सुनसुन में भारत में तीन मंदिर की स्थापना शुरू कर दी तीनों मंदिर में संकट बॉम्बे में वृंदावन में मायापुर तीनों जगह में संकट एक साथ में थे और ऐसा भयंकर संकट और स्थिति क्या थी सारे जो भक्त हो विदेशी थे इंडियन कोई भी नहीं था उनको भारतीय कानून व्यवस्था की जानकारी नहीं थी ना ही इन देश के जलवायु से उनके परिचित था वो दूसरे जलवायु से उत्पन्न होने वाले जीवात्मा थे और यहाँ कभी गर्मी कभी बारिश मच्छर बहुत सारा संकट आते चूहे बिल्ली बहुत सारा इनसे संकटमय जीवन संघर्ष करता था। होते हुए भी शिला प्रभुपाद के भक्त लोग उनसे विरत नहीं हुए अटिक रहे और धीरे धीरे प्रभुपाद की कृपा से भगवान की कृपा से सफलता भी प्राप्त की। हम लोग भी ऐसे जब करते हैं तो हमें ऐसे सफलता प्राप्त होती है। जैसे ये ही मंदिर की बात एक समय ये मंदिर का छोटा था तिरसठ कमरे में था वहां थोड़े से लोग आते थे व्यवस्था नहीं था गाड़ी रखने की व्यवस्था नहीं थी लोगों की फिर वहां छोड़ के से एक जगह में भगवान के श्री राधा राधिकावन जी दिवस प्रतिष्ठित थे जहां पर लोग आगे दर्शन करने में मुश्किल से 15 आदमी वहां खड़े हो जाए तो और उसे कुछ जगह नहीं मिलता था। और आज भगवान ने वही भगवान क्या किया भक्त की करुण प्रार्थना से उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने उसी जगह व्यवस्था की। उससे बढ़िया जगह है बहुत बड़ा पार्किंग व्यवस्था सब कुछ तो बहुत आनंद देने के लिए भगवान जब देखते हैं भक्त बहुत कष्टमय मार्ग में चल रहे हैं, तो भगवान उस रास्ते को और प्रशस्त कर देते हैं, सुगम कर देते हैं, तब अनुमान प्राप्त होता है। ये चीज भक्त ही अनुभव कर सकते हैं जो सही महिला ने भगवान की भक्ति में जीवन को समर्पित किया। तो भक्त ने इस प्रमाण के रूप में ग्रहण किया कि पुस्तक वितरण पढ़ाने के लिए कृष्ण प्रसाद के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। इसके पूर्व किसी आदरणीय पुण्य वैदिक साहित्य का इतने बड़े स्तर पर वितरण नहीं किया था। यह दूसरा लक्षण था कि श्री प्रभुपाद कृष्ण के अभिन्न पद्धति थे और प्रभुपाद के आदर्श के पालन के अपने प्रयास से भक्त भी कृष्ण द्वारा अभिन्न हो रहे थे। किंतु यह तभी संभव था यदि भक्त समर्पण और त्याग के परीक्षण के लिए तैयार हो। जो मैंने बोला था वो भी यहां लिखा हुआ। इनमें से प्रगर्ष प्रभु प्रगर्ष दास नाम के प्रभुपाद के एक भक्त बने, दो भक्त थे, उन्होंने अपने जीवन कथा सुना रहे हैं कैसे उन्होंने इस सेवा को किए थे और क्या क्या संकट आए थे। तो कहने हैं मैं एक दिन हवाई अड्डे पर गया और एक काले आदमी के पास पहुंचकर बोला क्षमा कर, सिर्फ इतने शब्द बोला और उसके बदले में क्या हुआ, आप कल्पना कर सकते हैं आप किसी को क्षमा करें और बदले में व्यक्ति क्या करेगा, भारत में तो करेगा ठीक, भारत की ऐसा स्थिति नहीं आती है, अभी तो समय ऐसा स्थिति है। तो उन्होंने क्या किया, इतनी ही कहा था कि उसने मेरे मुंह पर एक बहुत कष्ट भूसा जमा क्षमा करे बोला तुम्हें गुस्सा मारते हो काले व्यक्ति और मुझे गिरा दिया, कैसे देश है कैसे जीव है ये कल्पना नहीं कर सकते। उस समय मेरे दिमाग में कोई विचार आए, उस दिन सवेरे की कक्षा में दिनवाणी ने जो शब्द कहे थे वैसे मेरे कान में गूंजने लगे, हमें दृढ़ संकल्प होना है। अब तो मैंने अपने आप से कहा ठीक है मैं वापस खड़ा होकर फिर प्रयास करता रहूंगा। अगर हमारे किसी को ऐसा स्थिति प्रकट हो जाए तो हम तुरंत बोलने भैया कल से दिख जाना जो हो गया प्रभु जी बहुत करना है दान का, ये दूसरे किसी को देखो सेवा हमको तो यहाँ गाड़ी में चला करते ऐसा। मगर इन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया, क्या कहा, मैं खड़ा हो गया एक दूसरे आदमी के और मुड़ने की प्रेरणा के साथ उसके पास गया और प्रभुपाद की एक पुस्तक उसे दी। एक अन्य अवसर पर एक पति पत्नी का जोड़ा मेरे पास आया, तो पति का मुंह से जैसे कुछ लेना देना नहीं था। जब स्त्री ने देखा कि पुस्तक आध्यात्मिक है तो रुक गई और बोली ये पुस्तक कैसी है। मैंने बड़ी रुवाई से कहा यह पुस्तक जन्म अनुभव के बारे में बता दी और उसके बाद के बारे में ही। वो बोली हाँ, तो वो अपने पति को और बुढ़िया कहा इसे खरीद लेती है, लेकिन उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। पति देव ने क्या कह दिया, मुझे नहीं चाहिए, यहां भी ऐसे होते हैं विदेशों से काफी हुआ भी हमारा देश विदेश जैसा ही हो गया। हाँ उल्टा मतलब विदेश जैसा नहीं विदेशी हो गया, समझ सब कुछ उल्टा है उसी देश की तरह, वो लोग हमारा देश की तरह व्यवहार करें हम उनके देश की तरह आचरण करें। तो समय बदल गया कलयुग में तो स्वभाव बदल गए, कभी कभी पत्नी रुकावट डालती कभी पति रुकावट डालते दोनों में है। वो बोले कृपया, उसके पति ने कहा तुम खरीदो और वो चल गया। वो मेरे पास रुक गए, बोली क्या इस पुस्तक के बारे में आप मुझे कुछ और बताएंगे। मैंने बता क्या आप ने कहा आप कहां से आ रही हैं। वो बोली मैं रोचेस्टर से आ रही हूँ। तब उसने ये रहस्य खोला कि वो मेयोक्रिक से आ रही है और उससे जीवन नगर कैंसर था। और वो पढ़ने वाले थी, उसने कहा मैं निराश की इस घड़ी में यह पुस्तक पढ़ना चाहती हूं उसने मुझे 10 डॉलर दिया, कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब पुस्तक लेकर वो तेजी से चली। कुछ समय बाद वो फिर आई और मैं जो वहीं पाया, उसने मुझसे हाथ मिलाया और धन्यवाद दिया। इस तरह के अनुभव जो हम भक्तों को दिन प्रतिदिन हो रही है, हमें ये भावना को सब पता करते हैं कि हम किसी विशेष वस्तु के दूर या प्रतिनिधि है। ये एक्सपीरियंस होते हैं जब पहले पहले भारत में भी इस प्रकार के उत्साह प्रदान करते थे भक्तों लोग। उस तरह विवरण में तो हमने देखा था, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। पहले से ही भक्त लोग क्या करते थे, अपने अपने किताब को जमा कर देते थे, गोदाम में रहता नहीं था, अपने कब्जे में देते थे, खत्म ना हो जाए तो कोई 5 रुपए 1000 2000 जितना उस समय जो असंभव चीज था वितरण करने का वो लेते थे और अपने सुरक्षित जगह रख करके सुबह ही मंगलारती के बाद गाड़ी लेकर निकलते थे। सुबह हम एक किया है लेते उसमें तो हम क्या करते थे, मंगलारती के बाद प्रदक्षिणा किया 7:30 बजे 10 बजे गोपाल पूजा के बाद निकलते थे और इसी जगह पड़ते थे जहां हमें गाड़ी को लगाना है वहां पार्किंग देर से जाएगा तो नहीं। इससे पहले दुकान खुलने वाले 11:10-11 बजे दुकान खुलेगा और आप आते थे 8 बजे आगे गाड़ी लगा देते तो 7:30 बजे वहां पे बैठ के चेक करते थे और कुछ टेप चला देते जो हरे कृष्णा धोन की सुनते रहे सड़क में जाए। तो यहीं पर चांदनी चक में लगा देते गौरी शंकर मंदिर, तो सोमवार को बहुत भीड़ होते हैं उस दिन लगा देते, मंगलवार को हनुमान मंदिर ग्रांड प्लस में वहां बहुत भीड़। तो मंगलवार को हम वहां थे तो चूंकि वो बहुत विख्यात थे, अभी तो उस जगह की भूलिया बदल दिया, छोड़ने साहब ने कैफे बना दिया तो ऐसा नहीं था। तो उस समय 7 बजे आना पड़ता था वहां और वहां के लोग परमिशन देने के लिए बहुत मुसीबत करते थे, कोई मंगा देते थे ज्यादा हमारे ग्राहक को अपने बनने थे तो उनको तो संतुष्ट करने करके कैसे भी वो देख के संतुष्ट करते थे तो साथ तो वो क्या करते थे हमको मदद करते थे, हमारा जगह कोई कब्जा ना कर ले, कोई आगे गाड़ी ना लगाए जिससे सुरक्षा प्रदान कर देते प्रसाद करा लो तो तुरंत प्रसाद ना हो तो वहां के खड़े रहते थे और रात 12 बजे जब बंद हो जाते जाते थे वापस। ये समय की अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है तो हम क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति को छोड़ देते भाई साहब 5000 निकाल लो, हम तो कहते ना मैंने की झगड़ा कौन करे, 5000 निकाल लो तालिया बस्ती कर और पहले एक एक किताब पढ़ा। उसमें जो आनंद था वही आनंद यहाँ नहीं होता है, वही बता रहा हूँ। एक व्यक्ति को 5000 निकाल दिया उसे कोई आनंद नहीं है, वो लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुई है जो एक किताब देने के लिए एक व्यक्ति द्वारा देने के लिए कितना प्रयास करते हैं उसी की जीवन का था यहाँ लिखा है। तो वो क्या करेंगे, कुछ समय बाद फिर आए मुझे वही पाया, उसने मुझे हाथ मिलाया धन्यवाद दिया। इस तरह के अनुभव जो हम भक्तों को दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, हम ये भावना उत्पन्न करते हैं कि हम किसी वस्तु विशेष के दूर त्याग करते हैं। इससे प्रभुपाद के कार्य के निष्पादन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है, हम ऐसे चमत्कार घटित देखते रहते हैं। हमें आश्चर्य हो रहा है कि हम पहले किसी से बात करते थे वो सुनते सुनने को राजी नहीं होते, किताब जिसमें कोई रुचि नहीं रखता इसको देने में थोड़ा बहुत आग्रह करते हो दे देते हैं और जान पहचाने करिए ये करिश्मा कैसे है, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा होती है। तभी जब हम प्रयासरत करते हैं तो हमें ऐसा कृपा प्राप्त होती है और तभी आनंद होता है। दूसरे भक्त कैसे भारती उन्होंने अपने जीवन का खत्मा नहीं कैसे उन्होंने किया, मैं सक्षम सन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे में पुस्तक वितरण करता रहता था। मेरी समझ में ये हवाई अड्डा बड़ा मुश्किल था, अजरी में लॉस एंजलिस में होता तो मैं संभव उतनी ही पुस्तक लेता जितनी टिप्पणी करता है। मुझे अपने पास कुछ डर था तब मुझे टिप्पणी के साथ पुस्तक वितरण का अवसर मिला। मैं बहुत पूरी तरह प्यार लोगों से जल्दी हिल मिल जाने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए किसी को रोक लेना या उसे कुछ करना मेरे कभी कोई समस्या नहीं रहा। लेकिन आधा घंटा बीत गया, फिर एक घंटा बीत गया और इस बीच टिप्पणी ने 5 और फिर 10 पुस्तकें भेज डाली और मुझे कोई व्यक्ति ही नहीं जो मुझे रोक ले या मुझसे हाथ भी बुला सके, जिनके अंदर में इस तरह की भावना जागृत होते हैं कि हम गुरु के आदेश के अनुसार सेवा करूंगा। और जब वो सेवा ठीक से नहीं हो पा रहा है तो बहुत दुखी हो जाता है।
जानते हैं इसलिए वो क्या करते हैं
वो भगवान के सामने प्राप्त हुए। और भगवान ही उन भक्त की निर्माण करने के लिए कृपा करते। तो इन्होंने क्या करें कि बहुत समय बीत गया, एक भी किताब बेच नहीं पाई। जो मुझे रोक दे या मुझसे हाथ मिला सके या उससे बात की, किंतु मैं जानता था कि यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत अधिक घमंडी था, कामयाब नहीं हो रहा था। बता रहे मैं मेरे मन में घमंड आ गया था, मैं किसी को रोक देता हूँ, जिसको जो बोलता हूँ सुन लेते। ये घमंड जैसे पैदा होते हैं, परिणाम ऐसा होता है कोई भी बाजू वाले में खड़े हैं वो बहुत किताब बच रहे हैं, मैं खड़े हैं उसके पास कोई नहीं आता। हमें भी ऐसा होता, क्योंकि मैं प्रभुपाद की पुस्तकें बेचना चाहता था। अंत में मैं निराश होकर बैठ गया और मैं कभी कभी रोने लगा। त्रिपुरारी मेरे पास आया, उपदेश देने लगा। उसने कहा, ऐसे कठिन समय में मुझे भगवान चैतन्य नित्यानंद से प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरे भक्त जो ज्यादा किताब बेच रहे थे उन्हें उसकी दशा देख उनके पास आ गया, कहने लगे कि घबरा हुआ अब भगवान चैतन्य महाप्रभु करी, उनसे प्रार्थना करिए शक्ति दे। और बेटा की चिंता मत, ऐसा होते ही रहता है। तब मैंने अपने आप को संभाला और 10 या 15 मिनट लगातार मेरे बसाया लोगों से बात करने लगा, उसने पुस्तकें खरीदी। जब हमने बाद में इस पर विचार विमर्श किया तो हमें समझ आया कि हम भगवान चैतन्य के हाथों की केवल उपकरण हैं। इस तरह हमने संकीर्तन दर्शन का विकास किया। पुस्तक वितरण के माध्यम से हमने जाना कि प्रभुपाद वो हैं और हम उनके अधिक प्रशिक्षित बन गए। ऐसी एक माता जी थी लवमती का नाम, वो कह रही है पुराने कैसे प्रभुपाद की इस आंदोलन में योगदान के शुरू में मैं सारा दिन सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े रहती थी और वहां से हजारों व्यक्ति गुजरते थे और हम सैकड़ों पुस्तक वितरित करते थे। हम प्रभुपाद की पुस्तकों से पंक्तियां वितरित करते रहते थे। फिर बड़े हंस के नील क्षीर विवेक के बारे में बताता था। हम लोगों को समझने में समझाने में इस पंक्ति का बार बार व्यक्त करते। लोग चल रहे हैं उनको ये समझा जाए कैसे स्थिति होगी, सड़क में कोई किसी काम के लिए कहीं भी जा रहे हैं और आप उनको समझाने लगे तो क्या कहेंगे? आशीर्वाद नहीं देंगे, निश्चय आशीर्वाद देंगे नहीं, ना प्रसन्न होंगे। और फिर भी ये लोग ऐसी स्थितियां या ऐसी कर्म करते रहते हैं, ऐसे प्रयास करते रहते हैं। त्रिपुरा हंस के नील क्षीर विवेक के बारे में बताता। हम लोगों को समझाने में इस पंक्ति का बार बार प्रयोग करते। हम कहते कि ये महादृश्य किस प्रकार पानी से दूध अलग करना चाहते थे, अर्थात ये सारभूत अंश को अलग कर सकते। त्रिपुरारी यह भी कहता कि पुस्तक में दिए गए चित्र आध्यात्मिक संसार के जड़ों के हैं। हम कहते ये पुस्तक सूर्य की तरह प्रकाशमान है जिस कलयुग में अज्ञान के अंदर को दूर भगा देती। मैंने देखा कि पुस्तक का सर्वप्रमुख उपाय प्रभुपाद के शब्दों का प्रयोग करना है। प्रभुपाद ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पुस्तक की एक पंक्ति पढ़कर किसी को सुनाता है तो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर 100 गुना आगे हो जाता है। एक बार भक्त ने प्रभुपाद से शिकायत की कि कुछ लोग कुछ पुस्तकें फेंक दे रहे हैं, लेकिन तब हम समझ जाते कि प्रभुपाद चाहते थे कि पुस्तक अधिक से अधिक संख्या में हो। ये नहीं कि आप पुस्तक केवल ऐसे व्यक्ति को दे जिसे आप समझते हैं कि वो बुद्धिमान और पढ़ेगा। तो कभी लोग कहते हैं हम तो ऐसे व्यक्ति को देते हैं किताब जो पढ़ना चाहते हैं पर खुद नहीं पढ़ते। बोलते हैं हम ऐसे व्यक्ति को किताब देना चाहते हैं जो उसकी आदत करें पढ़े और खुद नहीं पढ़ता, तो कैसे होगा? तो उससे बहुत प्रभावित होगा। अतः हमारे समझ में यह बात आई कि प्रभुपाद पुस्तक उतारना बृहद पैमाने पर चाहते थे, न कि केवल उन लोगों को सीमित रखकर जिन्हें विशेष कुछ व्यक्ति समझा जाए। सूत प्रभु कहते हैं वैसे वैशेषिक मेरे साथ हवाई अड्डे में पुस्तकें बेच रहा था, वो लोगों के पास जाता और कहता महाशय आप कैसे हैं, जिनके सत्साई हो जो मानवता के लिए प्रमुख वरदान है और हृदय को विमल करने वाला है, वो पुस्तक से भगवान चैतन्य के शिष्यार्थ तक पुस्तक से प्रार्थनाएं मांगता रहता और पुस्तकें बेचता जाता। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर पुस्तक चित्र तथा भक्त के दृश्य होते हैं और कभी कभी तो वो भक्त की समझ में आता कि लोग चित्र का संबंध कैसे जोड़ेंगे, किंतु प्रभुपाद की इच्छा थी कि उनका विवरण हो और उनके कहना था कि हमें पुस्तक की श्रेष्ठता के अनुसार प्रचार करना चाहिए। जब एक भक्त ने पूछा कि पुस्तक बेचने के लिए हम क्या कहें तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कृष्ण स्वधाम भगत है। जिस श्लोक का अर्थ ये है कि भागवत श्रीमद् भागवत सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय इस अंधकार के युग में लोगों को धर्म प्रदान करने के लिए हुआ है। अब हम भी उसी श्लोक का उल्लेख करके धर्म पर इन पुस्तकों का विकल्प करते रहे। हम लोग बाहर जाते देखते कि लोग सचमुच कृष्ण भगवान आचरण से प्रभावित हो रहे हैं, वो देखते कि भक्ति का अत्यंत निष्ठावान तथा गंभीर है, अगर वे प्रभावित होते संकट के समय हमने ये तो देखते कि लोग प्रभुपाद की पुस्तकों की प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ लोग कम भी करते क्योंकि इसके विषय प्रभुपाद कह चुके थे कि कठिनाइयां सदैव आई, अतः हमें जो भी अनुभव होता प्रभुपाद से उसकी पुष्टि होती रहती। सिर्फ प्रभुपाद का कहना था कि पुस्तक विक्रेता को कभी भी कभी कभी कठिनाई होगी क्योंकि कभी लोग उसे स्वीकार करेंगे कभी अस्वीकार करेंगे, किंतु इसे सहना होगा। हवाई अड्डे में हमें अध्यापक वकील सभी तरह के लोग मिलते हैं, जरूर जाते हैं और बातें करते हैं, वो हमें चुनौती देते हैं, हम निरंतर प्रभुपाद की पुस्तकों के आंदोलन का समर्थन करते और प्रभुपाद की ओर से बोलते हमारा यह समर्थन उस समय की अपेक्षा अधिक जोरदार था जब हम छोटे बालक थे और मोटर अड्डों के इर्द गिर्द स्त्रियों से बात करते हुए उनसे एक पैकेट अगरबत्ती के लिए 50 सेंट देने का अनुरोध करते। अब हम लोग प्रभुपाद की पुस्तकों के द्वारा की तरह कोशिश कर रहे थे, मायावादी और वैज्ञानिकों व्यवसायवादी के समर्थ में आ रहे थे, शिकागो न्यूयॉर्क लॉस एंजेलिस और सैन डिएगो के लोगों के संपर्क में जो बड़े कुशाग बुद्धि वाले थे, कुशाग बुद्धि के साथ वे बड़े कठोर थे और उनके साथ आध्यात्मिक तंत्र करते तथा प्रतिरक्षा करने मात्र से ही हम प्रभुपाद की पुस्तकों को समझने में परिपक्व हो गए और जान लें कि पुस्तकों को कैसे प्रस्तुत किया जाए ताकि जो लोग आसक्त नहीं भी होना चाहते थे उन्हें ही हम आसक्त कर सके। हमें प्रभुपाद की पुस्तक का अध्ययन करना पड़ा तो आप यहीं तक समाप्त करते हैं। इसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि प्रभुपाद के भक्त ने किस तरह संघर्ष करते हुए हमें ये अमूल्य भेंट प्रदान की जिसकी जगह में बैठ के हम आज आनंद ले रहे हैं, जो हम आनंद ले रहे हैं गौरवान्वित है अपने कर्म से, ये पूर्व महात्मा गणों की पूर्व आचार्य के वरदान की उनके कठिन परिश्रम के द्वारा निर्मित किए गए ये जो संस्था है उसमें आज हम आनंद ले रहे हैं। हमें यह अनुभव नहीं है इस कठिनाई से गुजर करके ये संस्था स्थापित हुए, प्रभुपाद ने विभिन्न जगह में सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए और ऐसे सुंदर सुंदर भक्तों के आगमन आज वो इस जगह बैठ के लिए उसके आनंद ले रहे हैं। वैसा एक समझदार चाहिए सब कुछ भी नहीं, तो हमें समझना चाहिए और स्मरण करना चाहिए दिन रात जहां हम जो प्रगति कर रहे हैं इसकी एकमात्र से उन महात्माओं की है जिन्होंने अथक प्रयास के द्वारा हमें आग की प्रशस्त रास्ता दे दी है, सिखा दे दी जहां बैठकर हम भजन कर रहे हैं और आज जो हम कर रहे हैं आने वाले समय के लोग भी तो एक बार पता चल सकते हैं। तो आप सभी के धन्यवाद, आप लोग शुद्ध आत्मा है जो भगवान की भजन में अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं और रोजाना भगवान के समूह इन कथाओं को श्रवण करते हुए अपने जीवन की जो सुंदर परिस्थिति है उनको भगवान की सेवा को सेवा में सेवा में लगा रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक करें, भगवत धाम जाने का मार्ग प्रशस्त करें। हरे कृष्णा।